कसी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गी जीवन रोटी आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हमारे सभी श्रोता भाई बहनों व मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मुझे आशा है आप प्रभु की कृपा से कुशल हैं और आज के बाइबल अध्ययन में भाग लेने को तैयार हैं। आपके सुंदर सुंदर पत्रों के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आपके प्रश्न इस बात का संकेत हैं कि आप कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और कार्यक्रम से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप मुझे इसी प्रकार पत्र लिखते रहें, क्योंकि मेरे परिश्रम का पारितोषिक आपके ये सुंदर पत्र ही तो हैं। सो पत्र लिखना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इस सुसमाचार का मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। इसके मुख्य शब्द हैं चिन्ह, विश्वास तथा जीवन। प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनका मुख्य बल अनंत काल अर्थात शाश्वत जीवन पर है। सो इसी संक्षिप्त परिचय के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। किंतु इससे पूर्व के अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगें। हम प्रार्थना करें। हे परम प्रधान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर और मधुर क्षणों के लिए जो आपने हमारे व्यस्त जीवन में हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें ताकि हम इस पर विश्वास कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है या किसी गंभीर समस्या में उलझा हुआ है या किसी घोर पाप में फंसा है, अपने जीवन में निराश है, अशांत है, हताश है, प्रभु आप उसकी सहायता करने की कृपा करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन दिनों हम नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 15वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। 15वां अध्याय 13वें अध्याय के उपरोठी कोटरी प्रवचन अर्थात अपर रूम प्रवचन का ही भाग है। यद्यपि प्रभु जी ने इस प्रवचन को वहां प्रस्तुत नहीं किया, बाइबल पवित्र शास्त्र में दाखलता अर्थात अंगूर की लता इसराइल जाति का प्रतीक है। जैसा कि हम भजन 80 उसके 8वें और 9वें पदों में देखते हैं, यहां इस प्रकार से लिखा है, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया, तूने जाति जाति को निकालकर उसे लगा दिया, तूने उसके लिए भूमि तैयार की, उसने गहरी जड़ पकड़ी और देश भर में फैल गई। इसी प्रकार से हम यशाया नबी की पुस्तक के प्रथम अध्याय के 7वें पद में भी पाते हैं, यहां इस प्रकार से लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक 5:7 सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इसराइल का घराना है और उसका मनभावना पौधा यहूदा के लोग हैं। उसने तो न्याय की आशा की, पर देखो रक्तपात ही देखने को मिला। धार्मिकता की आशा की, परंतु देखो चीत्कार ही सुन पड़ी। तो यहां पर भी हम पढ़ते हैं कि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इसराइल का घराना है। और इसी प्रकार से यर्मिया नबी की पुस्तक के 2:21 में भी यर्मिया नबी इसी प्रकार कहता है कि मैंने तो तुझे एक उत्तम दाखलता और पूर्णता विश्वस्त बीज कह के बोया था, तब तू मेरे लिए एक जंगली दाखलता की भ्रष्ट डालियां कैसे बन गई। और होशे नबी भी अपनी पुस्तक के 10:1 में कहता है, इसराइल एक रिक्त दाखलता है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो गया कि दाखलता इसराइल जाति का चित्र है, अर्थात उसका प्रतीक है। अब प्रभु यीशु मसीह यहां एक अत्यंत क्रांतिकारी कथन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऐसी बातें उनके शिष्यों ने कभी नहीं सुनी थी, ये उनके लिए विचित्र बातें थी। यद्यपि आज ये हमारे लिए जाना पहचाना सा लगता है, परंतु प्रेरितों के लिए, उनके चेलों के लिए ये अद्भुत बातें थीं, विचित्र बातें थीं, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने ऐसी बातों को कभी नहीं सुना था। सो आइए प्रभु जी की बात सुनते हैं कि वो बात कौन सी है जो अद्भुत बात है। मेरे साथ देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:1-10। इन पदों को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यदि आपके पास बाइबल की प्रति है तो ध्यानपूर्वक उसमें देखें, अन्यथा सुनने का कष्ट करें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे और इसको समझने में हमारी सहायता करे, आमीन। सर्वप्रथम हमने पढ़ा, सच्ची दाखलता मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ये दावा करते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्ची का क्या अर्थ है? मित्रों, सच्ची का अर्थ है असली, जिसमें कुछ भी नकलीपन नहीं है। इसमें कोई झूठ, कोई धोखा, किसी भी प्रकार की भूल चूक नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो पूर्णता सिद्ध है, इसका अर्थ है सच्ची। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ। हम इस शब्द को इस सुसमाचार में अन्य स्थानों पर भी पढ़ चुके हैं। प्रेरित यूहन्ना 1:9 में प्रभु यीशु मसीह को सच्ची ज्योति के नाम से संबोधित करते हैं। वहाँ उन्होंने कहा है, वो सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। परमेश्वर के सेवक मूसा ने जंगल में उन्हें अर्थात इसराइलियों को रोटी खिलाई, किंतु सच्ची रोटी प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये शिष्य यहूदी विचारधारा के लोग थे और उनके विचारों का क्रम पुराने नियम द्वारा संचालित होता था। यहाँ प्रभु जी उनसे कहते हैं कि इसराइल जाति सच्ची दाखलता नहीं है। अब ये बात इन चेलों को स्वीकार करना कठिन था और ये वास्तव में इनके लिए एक विचित्र और अद्भुत बात थी। और इस प्रकार यहूदी जाति तथा धर्म से उनका संबंध अनिवार्य वस्तु नहीं है, क्योंकि सच्ची दाखलता मैं हूँ इसराइल जाति नहीं है। अब ये वास्तव में चेलों के लिए कठिन बात थी कि वो इसको स्वीकार करें। यहाँ हम प्रभु जी की भाषा को एक अलंकारी भाषा के रूप में देखते हैं। वो उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। अब ये भी विचित्र कथन है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। पुराने नियम में परमेश्वर को दाख की बारी का स्वामी कहा गया है, अर्थात वह जो दाख की बारी की देखरेख करता है। अब इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के इस कथन से स्पष्ट होता है कि सच्ची दाखलता इसराइल नहीं और इसराइल का रक्षक और सहायक और स्वामी परमेश्वर नहीं। यीशु सच्ची दाखलता है और पिता उनकी देखभाल करता है, इसराइल की नहीं। पिता दाखलता की देखरेख करता है, वो डालियों की भी देखभाल करेगा। डालियों को दाखलता से संयुक्त अर्थात जोड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। ये समस्त बातें प्रभु जी अपने कथन में स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रत्येक डाली का दाखलता से जुड़े रहना कितना आवश्यक है, क्योंकि दाखलता के द्वारा ही उसको जीवन और फलवंत होने की सामर्थ्य मिलती है। तब दूसरे पद में प्रभु जी कहते हैं, प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। मित्रों, मुझ में का अर्थ है मसीह में, और मसीह में का अर्थ है उद्धार प्राप्त व्यक्ति। समस्त मानव जाति दो भागों में विभाजित है, एक तो वो जो मसीह में है और दूसरा विभाग वो है जो मसीह में नहीं है, अर्थात उनसे पृथक है। आप मसीह में कैसे हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप नए जन्म के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदिमस नामक एक फरीसी अधिकारी को ये बताया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। और आगे उन्होंने ये बताया कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इस प्रकार से प्रभु जी ने स्पष्ट बताया कि तुम नए जन्म के द्वारा, जो इसी शरीर में होता है, उस नए जन्म के द्वारा ही मसीह में हो सकते हो। मित्रों, जब आप मसीह यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मेरे स्थान पर मारे गए, और आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से जीवित किया, तो प्रभु यीशु मसीह इस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में निवास करते हैं, और आप इस विश्वास द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, और आप परमेश्वर के आत्मा द्वारा नया जन्म प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा आप में रहता है और वो आपको मसीह से जोड़ देता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को ये प्रतिज्ञा दी। 14 अध्याय के 17वें पद में हमने देखा, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे ना देखता है और ना जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। सो इस प्रकार से पवित्र आत्मा हमको मसीह से जोड़ देता है और आप मसीह का बदन बन जाते हैं। प्रत्येक डाली जो मुझ में है उसका अर्थ यही है, आप मसीह में हैं, मसीह आप में है। इसका प्रमाण यही है कि आपका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है। आप पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी से प्रमाणित होता है कि प्रभु यीशु मसीह आप में है और आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह अर्थात पिता काट डालता है। वो उसे काट कर कहां डाल देता है? मित्रों, वो उसे ऐसे स्थान पर डाल देता है जहां पर वो फल नहीं ला सकती। वो उसे फल लाने के स्थान से पूर्णता अलग कर देता है। आप ध्यान से सुने कि प्रभु यीशु मसीह इस पद की 6वें पद में किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। यहां लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। आप चिंता ना करें, हम 3 से 5 पदों पर पुनः आएंगे। तब तक हम छठे पद की व्याख्या देख रहे हैं। सो मित्र, आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इस प्रकार तो कोई व्यक्ति अपने उद्धार से पुनः वंचित हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को, जिसने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और उसका जीवन फलवंत नहीं है, तो वह अपने उद्धार से वंचित हो सकता है। जैसा यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है। मित्रों, ध्यान रहे, इस अनुच्छेद का विषय उद्धार नहीं है, परंतु इसका विषय है फल लाना। दूसरे शब्दों में ये उद्धार प्राप्ति के परिणाम के विषय में हमको बता रहा है, अर्थात उद्धार पाने के पश्चात व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है। इसलिए आप इस बात को अपने ध्यान से, अपने विचार से निकाल दें कि ये आपके उद्धार से संबंध रखता है या फल ना लाने के कारण आप अपने उद्धार से वंचित हो सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य विषय है फलवंत होना, फल लाना। सर्वप्रथम हम देखें कि ये फल है क्या जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु जी यहाँ आत्माओं को जीतने के विषय में नहीं बता रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आत्माओं का जीतना उपोत्पादन अर्थात उपफल है, गौण उत्पादन है। ये स्वयं में फल नहीं है। मुख्य फल आत्मा का फल है, और जिसके विषय में गलातियों की पत्री के 5 अध्याय के 22 और 23 पदों में बताया गया है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम अर्थात अनुशासन। मसीह यीशु के विश्वासी में ये फल होता है, क्योंकि ये आत्मा का फल है, ये उसके द्वारा अर्जित फल नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में इस फल को उत्पन्न करता है। मसीह में रहने का परिणाम फल अर्थात प्रभावोत्पादक फल प्रद प्रार्थना, चिरस्थाई फल तथा दिव्य आनंद है। यही वो फल है जो एक विश्वासी जन में पाया जाना आवश्यक है। आइए इन 3 बातों को देखें। ये फलप्रद प्रभावशाली प्रार्थना क्या है? 8वें पद को देखिए। 8वें पद में इस प्रकार से बताया गया है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। और तब 11वें पद में प्रभु जी कहते हैं कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मित्र, ये दिव्य स्वर्गीय आनंद है जिसके विषय में यहां प्रभु यीशु मसीह चर्चा कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूर्ण हो जाए। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में यह फल पाया जाता है, वो अनेक लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आएगा, और इस प्रकार आत्माओं को जीतना उपफल या गौण उत्पादन बन जाता है। सो हमने देखा कि सर्वप्रथम हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण फल है वो है प्रभु यीशु मसीह में बना रहना और फलप्रद प्रभावशाली प्रार्थना में जीवन होना। उसके पश्चात जब हम इस प्रकार का जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद होगा, और आनंद पवित्र आत्मा का फल है। और जब इस आनंद में हम उस आनंद के सुसमाचार को लेकर दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से हम बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में लेकर आएंगे, और इस प्रकार हम आत्माओं को जीत सकेंगे। और आत्माओं को जीतना ये गौण उत्पादन बन जाता है। हम पुनः वापस 3रे पद पर आते हैं। आइए देखें तीसरे पद में क्या लिखा है। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। मित्रों, शुद्धिकरण का कार्य परमेश्वर के वचन के द्वारा पूर्ण हो चुका है। पहला पत्रस उसके प्रथम अध्याय के 22 और 23 पदों में हमें इस प्रकार से बताया गया है, जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है, तो हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन के द्वारा नया जन प्राप्त किया है। सो यहां पर ये बात स्पष्ट है कि हमारा शुद्धिकरण प्रभु के द्वारा हुआ है। हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन प्राप्त किया है। हम अपने पापों से शुद्ध हुए हैं, किंतु इस संसार में हम बार बार प्रदूषित होते रहते हैं, क्योंकि हमारा संपर्क इस संसार से बना रहता है। चलते फिरते, उठते बैठते, बाजार में आते जाते, अपने कार्यालय में, यात्रा में, हम इस संसार के संपर्क में आते हैं और हम प्रदूषित होते रहते हैं। और इसलिए हमें प्रतिदिन ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन द्वारा निरंतर शुद्ध किए जाएं, जिस प्रकार से हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, ताकि हमारा प्रदूषण दूर हो जाए, हम अगले दिन के लिए शुद्ध होकर अपने आप को तैयार कर सकें। हम बाहर से आते हैं, अपने हाथ पांव धोते हैं, मुंह धोते हैं, ताकि हम प्रदूषण से बच सकें। उसी प्रकार से इस आत्मिक प्रदूषण से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ें, उस पर मनन करें और उसे अपने हृदय में बसाएं। हम परमेश्वर के वचन द्वारा ही निरंतर शुद्ध किए जाते हैं और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अध्ययन की आवश्यकता है। जैसा कि भजनकार अपने भजन 119 के 9 पद में बताता है, भजनकार कहता है कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे तेरे वचन के अनुसार चलने से। अर्थात एक जवान व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार व्यतीत करने के द्वारा ही शुद्ध और पवित्र रख सकता है। सो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का ये कथन कि तुम उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहे हैं शुद्ध हो चुके हो, तब 4 और 5 पदों में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। और 5 पद में वो कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इन दोनों पदों में प्रभु यीशु मसीह हमारे फलवंत जीवन से संबंधित रहस्य की बात बता रहे हैं। वो कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। ये सत्य है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए नहीं हैं, हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ नहीं है, हम उनके साथ संयुक्त नहीं हैं, तो हमारा जीवन फलवंत जीवन नहीं हो सकता। हमारा जीवन प्रभावशाली प्रार्थना का जीवन कदापि नहीं हो सकता। किंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, हमारा संबंध उनके साथ घनिष्ठ बना रहता है, तो हमारा जीवन एक प्रभावशाली प्रार्थना का जीवन बना रहता है। और जिस प्रकार से यदि डाली दाखलता में बनी नहीं रहती तो वो फल नहीं लाती, वैसे ही हम भी यदि प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहे हैं, यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ नहीं है, हमारा संबंध उनके साथ बना नहीं है, तो हम भी फलवंत जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। अब इसी के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। Thank you.
जिंदगी में मैंने पाया जब से यीशु हम सफर, तब से मुझको रास्तबाजी और जिंदगी आई नजर। जिंदगी में मैंने पाया जब से यीशु हम सफर, तब से मुझको रास्तबाजी और जिंदगी आई नजर। जिंदगी में मैंने पाया मुझ पर फजल तेरा, तो पाया है सबर। जिंदगी में मैंने पाया जब से यीशु हम सफर।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोता, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।